किताब सदाए जर्स, इंतिसाब, उस गूंज के नाम जो सदाए जर्स के मुताले से इंसान में पैदा होती है। हयात ओ ममात, दिन माह हो साल पर मुहित जिस जमानी वक्फे को जिंदगी का नाम दिया जाता है, इसका ताल्लुक दरअसल मादी मजाहिर से है। जब ये मादी वसाइल मफकूत हो जाते हैं और हंसता बोलता चलता फिरता गोश्त पोस्त का पुतला साकित व बेहिस हो जाता है और जिंदगी के आसार खत्म हो जाते हैं, तो हम इसे मुर्दा करार दे देते हैं। हालांकि इस मुर्दा जिस्म में हर उज्व मौजूद है जो मरने से पहले जिस्म में मौजूद था। दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, खून होने के बावजूद जिस्म में हरकत बाकी नहीं रहती। इस हकीकत के पेश नज़र ये मानना पड़ेगा कि जिस्म में ज़रूर कोई तब्दीली हुई है जिसकी वजह से जिस्म के तकाजे ख़त्म हो गए हैं। मज़हब बताता है कि मरने के बाद कब्र में हिसाबो किताब होगा, जबकि कब्र के अंदर जिस्म मिट्टी के ज़र्रात में तब्दील होकर मिट्टी बन जाता है। मरने के बाद जिस इंसान से एहतिसाब होगा वो ये मादी जिस्म नहीं है, बल्कि रोशनियों का एक और वजूद है जो हमारे जिस्म के ऊपर रोशनियों के हाले की सूरत में रहता है। मरने के बाद यही जिस्म हमारे कुर्रे अरजी में ज़मीन से ऊपर एक जोन में चला जाता है। ये रोशनी का जिस्म वहाँ मुय्यना मुद्दत तक ज़िंदगी गुजारता है। इस जोन के तकाजे भी हमारे मादी जिस्म के तकाजों की तरह हैं। कुरान पाक में जहाँ इस मकाम जोन का जिक्र आया है, वहाँ वो मकाम बुलंदी और पस्ती का जिक्र भी मिलता है। इन दो मकामात का हमारे मादी ज़िंदगी से भी गहरा ताल्लुक है। मज़हब हमें बताता है कि जिंदगी अगर मजहबी उसूलों के तहत गुजारी जाए तो इंसान इसके आला मकाम में रहता है, और अगर मजहबी उसूलों से रूगर्दानी की जाए तो इंसान असफल और पस्त मकाम पर जिंदगी गुजारता है। आला मकाम पर रहने वाले लोग खुश रहते हैं, इन्हें किसी किस्म का खौफ और गम लाहक नहीं होता, जबकि पस्त मकाम पर रहने वाले लोगों में खौफ, दहशत, बेयकीनी और इस्तराब मुसल्लत रहता है। वो परेशानी से निजात हासिल करना भी चाहें तो निजात नहीं पाते। हर इंसान की ये फितरी मजबूरी है कि वो किसी न किसी अकीदे पर अपने मुस्तकबिल की तामीर करता है, इसलिए कि हालात इसे बताते हैं कि वो हालात के हाथ में चाबीदार एक खिलौना है। हालात चाबी भर देते हैं तो खिलौना चलता है, दौड़ता है, आवाज़ें निकालता है। चाबी ख़त्म हो जाती है तो खिलौने में कोई हरकत नहीं रहती। हालात क्या हैं, चाबी कहाँ से भरी जा रही है, इसके बारे में इंसान कोई इल्म नहीं रखता। ये लाइल्मी इसे अनदेखी ताकत की तरफ मुतवज्जो करती है। अनदेखी ताकत के ऊपर इसका यकीन इतना ही होता है जैसे चश्मदीद चीज़ों के बारे में होता है। मज़हब ने इस अनदेखी ताकत का खुदा के नाम से तारुफ करवाया है। जो लोग मज़हब बेजार हैं वो भी नादीदा ताकत को मानने पर मजबूर हैं। ये और बात है कि वो इसका नाम खुदा के बजाय नेचर या कोई और नाम रख लेते हैं। मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए, तारुफ करवाया कि मैं खुदा को नहीं मानता, सब कुछ मैं खुद हूँ, दुनिया मेरे सामने बाजीचाए अतफाल है। मैंने पूछा, अजी जनाब ये तो बताइए कि ये दुनिया आखिर कैसे बन गई। इन्होंने वही घिसी पिटी थ्योरी बयान कर दी। ज़मीन एक कुर्रा है, खला में आतिशफिशा फटा तो लावा बह निकला और लावे से दुनिया बन गई, वगैरह वगैरह। मैंने अर्ज़ किया, जनाब ये सब सही मान लिया जाए तब भी ये सवाल बाकी रहता है कि दुनिया में तवाज़न है, सूरज और चांद के लिए मंजिलें मुतय्यन हैं। कायनात में हर मौजूद शय की एक ड्यूटी है और हर मौजूद शय ने अपनी ड्यूटी से कभी इन्हराफ नहीं किया। आखिर ये सब मौजूदात जब किसी निज़ाम के तहत सरगर्म अमल हैं तो किसी न किसी के हाथ में तो इसकी बाग दौड़ होगी। बोले, हाँ ये नेचर का काम है, नेचर सबको संभाले हुए है। नेचर जानती है कि कायनाती निज़ाम किस तरह कायम रह सकता है। मैंने सवाल किया, जनाब मुसलमान नेचर को खुदा, हिंदू भगवान, पारसी निर्वाण, यहूदी एलिया, अंग्रेज गॉड कहते हैं। आपने खुदा नहीं कहा, नेचर कह दिया, ये खुद को धोखा देने वाली बात नहीं होगी? आदमी होशियार था, कुछ देर खामोश रहा, फिर गुफ्तगू का रुख बदल कर गोया हुआ। अगर आपकी बात मान ली जाए कि खुदा मौजूद है तो खुदा नजर क्यों नहीं आता? मैंने मौद्दबाना अर्ज किया, जनाब आप खुद को जानते हैं? वो खिलखिलाकर हंस पड़े, फिर जोरदार कहका लगाया और हंसते हुए बोले, क्या अच्छा सवाल है, क्या तुम खुद को जानते हो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कौन है जो खुद को नहीं जानता? मैंने इनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम खुद को जानते हो तो क्या तुम इस खून को देख रहे हो जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है? तुम्हारे अंदर एक कायनात आबाद है, क्या तुमने कभी इसका मुशाहिदा किया है? मैंने इनसे पूछा कि तुम जिंदगी की किसी भी स्टेज पर बूढ़ा होना पसंद करते हो? क्या तुम इस रंगो नूर की दुनिया से कुलियतन आजाद होना चाहते हो? क्या जिंदगी के किसी भी दौर में परेशान हाल, मुसीबत ज़दा रहना चाहते हो? सामने बैठे हुए साहब ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं जिंदगी से मुनहरिफ कोई मायूस आदमी हूं, जिसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई रमक बाकी नहीं रह गई है। गला साफ करके और थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर दुनिया में उरूज व जवाल, टूट फूट, नशोनुमा और फना व बका न हो तो फिर ये दुनिया नहीं रहेगी। मैंने कहा, मेरे दोस्त बात ये नहीं कि दुनिया फना व बका का एक खेल है या शिकस्त व रीख से ही नए नए शगुफे फूट रहे हैं। मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप मरना चाहते हैं, और जब आप मरना नहीं चाहते तो क्यों मर जाते हैं? आप खुद को बुढ़ापे के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन आपके स्याह खूबसूरत बाल चांदी के तारों में तब्दील हो जाते हैं। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने एक मजलिस में फरमाया, जमाना गुजरा, एक आदमजाद इतनी बड़ी उम्र को पहुंच गया कि इसका दुनिया में कोई भी नहीं रहा। गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ियां तोड़कर फरोख्त करते थे। एक रोज लकड़ियां ज्यादा जमा करके गट्ठर तो बांध लिया, लेकिन उठाते वक्त हाथों में लर्जा आ गया, खून पानी बनकर आंखों से बह निकला। बड़ी ही हसरत से आह भरी और बोले, मुझसे तो मलकुल मौत भी रूठ गया है, इसको भी मेरे हाल पर रहम नहीं आता, मैं अब क्यों जिंदा हूं? मेरे सब मर खप गए, मुझे मौत क्यों नहीं आती? अभी लम्हे का कुछ ही हिस्सा गुजरा था कि एक खूबसूरत नौजवान सीधी तरफ आकर खड़ा हो गया, सलाम किया और पूछा, बुजुर्गो मैं आपकी क्या खिदमत करूं? बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, मैं मलकुल मौत हूं, अभी आपने याद किया था, हाजिर हो गया हूं। बुजुर्ग फौरन बोले, लकड़ी का ये गठड़ा उठा के मेरे सर पर रख दे। सामने बैठे हुए ये साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं एक प्रोफेसर हैं, जो कम्युनिस्ट नजरिए पर अकीदा रखते हैं और पक्के इतने हैं कि कम्युनिज्म के 70 साल इमारत के ढेर हो जाने के बावजूद भी अपने नजरिए अकीदत पर कायम हैं। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, मेरे मोहतरम दोस्त, जिस तरह आज का दौर परेशानी और बेचैनी का दौर है, इसी तरह 5000 साल पहले भी परेशानी अपने उरूज पर थी। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिसकी लाठी इसकी भैंस वाला ड्रामा। पूरी दुनिया तवानाई के साथ देख रही थी। इल्म की नशरो अशात आम थी, मगर अवाम को सिर्फ वादाए फर्दा से धोखा दिया जा रहा था। एक गिरोह ने अपने मकसद, मतलब, तावीलात को मजहब समझ लिया था। मुनाफिकत इनका ओढ़ना बिछोना बन गया था। अवाम चक्की के दो पार्टों में पिस रहे थे। कोड़ियों का ढेर इनका मुकद्दर बना दिया गया था। एक घर में सैकड़ों कुमकुमे रोशन होते थे तो दूसरे घर में अंधेरा था। मजहब की अजारादारी जब शैतान सिफत लोगों के हाथ में आ गई और अवाम को मजहब के नाम पर इज्जत नफ्स से महरूम कर दिया गया, तो कानून कुदरत ने करवट बदली। फराइन के गिरोह नेस्त तो नाबूद करने के लिए एक मूसा पैदा हुए, और असाए मूसा ने खुद को अजदहे के रूप में बदलकर फराइन के तमाम बुत कदों को निगल लिया। अब फिर वो घड़ी आ गई है कि मजहब से खेलने वाले गिरोहों को असाए मूसा निगल लेगा और दुनिया फिर सुख और चैन का सांस लेगी। मेरी तकरीर दिलपजीर प्रोफेसर ने गौर से सुनी और कहा, सच है, तारीख खुद को दोहराती है। जो आज है वो कल होगा, और जो कल हो चुका है वो आज हो रहा है। आज और कल लम्हात गुजरने का एक अमल है। लम्हात का गुजर जाना माजी है। मैंने कहा, सारी कायनात लम्हात की फिल्म है जो अरबों साल पहले बन चुकी है, मगर हर जमाने में एक ही किरदार के मुख्तलिफ नामों से जमीन की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है।